سورة حشر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں جیسے مت بننا جو اللہ کو بھول گئے. نتیجے میں کیا ہوا ہوگا بھلا؟ اللہ ان کو بھول گیا. ایسے ہی آتا ہے نا کہ آپ مجھے بھولیں میں آپ کو بھول جاؤں گی. نہیں، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے. بدلے میں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کی جانیں ہی بھلا دی. یعنی اللہ نہیں بھولا، وہ اپنے بھی فائدے کے نہ رہے. اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. حقیقت یہ ہے، قرآن جو سورہ بقرہ کے آیت 9 میں کہتا ہے نا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر وہ دراصل خود ہی کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یہ بات منافقین کے ذمن میں آتی ہے وداؤٹ ٹیکنگ دیئر نیم، اپنی مرضی کو خود خدا بنا کر پوجنے والا اصل میں خود کو دھوکہ دیتا ہے. انسان کا جسم دن بدن ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑتا جاتا ہے. 7 سال کی عمر میں دانت چھوٹ جاتے ہیں. یہ تو شکر اللہ دودھ کے دانتوں کے بدلے میں دوسرے دانت دے دیتا ہے، نہیں تو ہم سب گھوڑے ہوتے، منہ پہ دانت ہی نہ ہوتے. لیکن آپ کبھی اپنے بالوں میں کنگھی کریں اور کنگھی میں آئے ہوئے بالوں کو دیکھ کر سوچیں یہ کدھر گئے؟ فوت ہو گئے. آپ کی چھال اترتی ہے سردیوں میں، چھال آپ کی فوت ہو رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کے جسم کا کوئی عضو جھڑ جائے. ایسے بھی لوگ ہماری اپنی فیملی میں کہ شوگر کی وجہ سے پہلے ناخن خراب ہوا، وہ جھڑا، پھر انگوٹھا کٹا، پھر انگلیاں پاؤں کی کٹیں، پھر پاؤں کٹا، پھر آدھی ٹانگ بھی کٹ گئی، اور کچھ عرصے بعد دوسری بھی کٹ گئی. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس طرح کے دھڑکے سا جیتے؟ نہیں. یاد رکھیے، ہم اپنی ذات کو دھوکے میں ڈال کر جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اسی دنیا میں. تو اگر اتنی بات کا سمپ کروں نا، تو آج کے دور کی بدترین غلامی میری مرضی، میری چوائس. اب دیکھیے کہ دور جاہلیت میں غلاموں کو زنجیروں میں باندھا جاتا تھا. یعنی انسان کو پہلے غلام بناتے اور غلام کو زنجیروں میں ڈالتے. آج کا انسان اپنی خوشی سے غیر مخصوص طریقے سے اپنی مرضی نام کی زنجیر میں قید ہے. آج اگر آپ کے والدین یہ بات کہیں، آپ ینگ بچیاں بھی ہوں گی نا، بیٹھے ماشاء اللہ سبھی ینگ ہے ویسے آپ، لیکن کچھ زیادہ ینگ ہوں گی نا. اگر آپ کے والدین آپ کے سامنے یہ بولیں چلو بھاگ جاؤ، ہم نہیں تمہیں دے رہے، آپ مجھے کیوں؟ اوکے میری مرضی، تو آپ برداشت کریں گے؟ یعنی بوڑھے ماں باپ کو ہم میری مرضی کی بات نہیں کرنے دیتے، آج 2 سال کا بچہ اپنی مرضی کی زنجیر میں قید ہے. ایک بھائی ایک چیز لے لے دوسرا نہیں لیتا، بہن کوئی چیز ٹچ کر دے تو وہ کہتا ہے میں نے یہ آملیٹ نہیں کھانا، ذرا سا انڈا فرائی کرنے میں کچا رہ گیا یا زیادہ پک گیا وہ کہتا ہے پھینک دو. میں پھر معذرت کے ساتھ ماؤں سے، بہت بڑا رول ہے اس میں ماؤں کا. لوگ کہتے ہیں نا آج کل بچے اچھے نہیں، بچے بچے بچے، معذرت ہے ماں اچھی نہیں ملی. جس ماں نے پیدا ہوتے بچے کو اس کی مرضیاں سکھا دی، کیا وہ بڑا ہو کر اس کی پسند کی جگہ پہ شادی کرے گا؟ اس کی پسند کے کپڑے پہنے گا؟ اور آج ہم اتنے مجبور ہو گئے، اتنی جلدی، ہم اتنے بڑے تو نہیں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے روایات بدلتے دیکھی. میں سوچتی ہوں کہ دین تو بدلا آج مسلمانوں کا، ہماری تو روایتیں بدل گئیں. بڑے بوڑھے کا جو ادب اور احترام آج سے 20-22 سال پہلے تھا، آج ہے. آپ اپنے سسر کا جتنا لحاظ کرتی تھیں، آج آپ کی بہو اپنے سسر کا اتنا لحاظ کرتی ہے؟ آج سے 20-25 سال پیچھے جائیے، جو بہن اور بھائی کے رشتے میں ایک غیرت تھی، بہن کو کیا مجال کے دروازے پہ کوئی دیکھ لے اندر چلو، بھائی اندر اور بہن دروازہ کھول دے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب نیا نیا فون گھروں میں آیا تو عورتوں کو، لڑکیوں کو اجازت نہیں تھی فون سننے کی، کہتے تھے رونگ کال جاتی ہیں، چلو تم اندر جاؤ. آج کا بھائی یہ جرت کر سکتا ہے؟ میں آپ کو گواہی دے سکتی ہوں کہ آج بہن ایک اپنے بھائی کو فون پہ بتاتی ہے آئی ایم گیٹنگ میرڈ، کل شام فلاں مسجد میں میرا نکاح ہو رہا ہے، اف یو ہیو ٹائم کم، یو ڈونٹ ہیو ٹائم نو پرابلم. میں چشم دید گواہ ہوں اس بات کی. भाई को जरूरत नहीं पूछने की ये कौन है। भाई जाता है, देखता है एक नया ही लड़का है। क्या हो रहा है? ये पहले कलमा पढ़ेगा फिर निकाह का कलमा पढ़ेगा। भाई को नहीं पता वो कौन है, उसका आगा पीछा कौन है। और वो लड़की किसी भी मौलवी साहब के जरिए निकाह करा के उसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। आज तक नहीं पता भाई बहन माँ को। माँ को तो पता होगा अंदर खाते कुछ रोग, भाई को नहीं पता। वल्लाही ये उस मुआशरे की कहानी है जहाँ आप सोचते हैं कि चले गए तो हम भी शुक्र आजाद हो जाएंगे। ये गुलामी तो नसीब वालों को मिलती है। देखिए आप चाहते हैं कि आपके शौहर, मैं अपने ऊपर लेती हूँ बात, अच्छी नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझे छोड़ दे और मैं आजाद हो जाऊँ। दिल करता है क्या रोज जाते बताना पड़ता है किधर गए, ये जाना है वो नहीं जाना, अब खाने का फिक्र, खत्म करो इनको। है कोई, अल्लाह ना करे कोई अकेला हो, लड़ने वाला शौहर भी, फिर भी अच्छा है शौहर तो है। एक वक्त आता है बंदा तन्हाई में ऐसे रोता है कि चलो वो लड़ने वाला ही रहता, आज मैं अकेली तो ना बैठी होती, है ना। तो क्या आप, मैं पसंद कर सकते हैं कि हमारे शौहर छोड़े हम आजाद हो? किसी हद तक आपके माँ बाप, ये छोटी बच्चियां हैं, माँ बाप रोक टोक करते हैं, करते ना जी। आपका दिल करता है कि आपके अब्बू ना रहे, ना रहेंगे ना मुझे पूछेंगे। आपके बड़े भाई आपको किसी चीज पे रोके और आप कहते अल्लाह ये क्या मुसीबत है भाई इनको निकाल, नहीं कर सकते। तो क्या फिर वो रब भी रह गए जिसको छोड़कर अपनी मर्जियां करते हैं? ये जो हम करते हैं ना, मैं माई माइन आई एम, ये चार लफ्ज है आज, मी माई माइन मैं, ये तो बकरी करती है, इंसान को नहीं अच्छा लगता। और याद रखिए किसके लफ्ज है, अना खैर मिन हो, इबलीस का जुमला है, मैं इससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिनन्नार व खलकतहु मिन तीन, तो लिबास हो तो मेरी मर्जी का, खुराक हो तो मेरी मर्जी की, जिनसे मैं चाहूँ बस मैं उनसे मिलूँ। मैंने तालीम उस यूनी से, बल्कि यूनिवर्सिटी नहीं, यूनी से हासिल करनी है जहाँ मैं चाहूँ, मुझे उस मुल्क में पढ़ने जाना है जहाँ मेरा दिल चरे। ये क्या बात हुई, आप आज़ाद पैदा हुए हैं? क्या आप मादर पिदर आज़ाद हैं? क्या आप दरख्त पे उगे हैं? कोई आपका वाली वारस नहीं? असल में आज इंसान अपनी मैं के पिंजरे में कैद है। तो क्या हम वाकई इस पूरी कायनात पे अपनी मर्जी चला सकते हैं? क्या मैं और आप इस सूरज को अपनी मर्जी पे चला सकते हैं? नहीं, अल्लाह ने इन सारे नारों को, सारे स्लोगन्स को पीछे डाल दिया। कैसे? आज रात को सोने से पहले पढ़ेंगे आप, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर, वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही, डोमिनियन, किंगशिप, सब कुछ है, बड़ी बबरकत वाला है और वो हर चीज़ पे कादिर है। सूरत मुल्क की पहली आयत। इसी तरह सूरत तकवीर की आयत 29 ले लीजिए, वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। सच बताइए, एक हदीस भी है ना कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, तो झुका दे तो उसको जो तेरी चाहत है। हदीस कुदसी में भी आता है, नहीं चल सकती हमारी मर्जी, हम इस काबिल ही नहीं है। और इसी तरह सूरत कमर की आयत 1150, व मामरूना इल्ला वाहिदत, हम बस एक ही बार कहते हैं, यानी ये हमें बार बार नहीं कहना पड़ता। हम तो अपने बच्चों को बार बार कहते हैं तो फिर वो कर लें तो बड़ी मेहरबानी है उनकी। अल्लाह कहते हैं हमारा हुक्म तो आंख के चपकने की तरह बस एक बात होती है, वह मामरूना इल्ला वाहिदतुन कलम हिन बसर। तो बात यह है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और जिंदगी के हर पहलू पर अल्लाह का हक है कि वो अपनी मर्जी चलाए और अपना हुक्म वाजे करे। अकीदा बुनियाद है, उससे शुरू करके इबादात, मामलात, अखलाकियात, सोना जागना, हर चीज़ के अल्लाह ने अहकाम दिए हैं। बींग अ मुस्लिम हम सब पाबंद हैं। किस बात के? सिर्फ गो थ्रू कराऊंगी चंद बेसिक अकायद। सबसे पहला आप देखिए चीज़, अकीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हम मक्का वालों की तरह ये नहीं कह सकते कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक का लका के बाद क्या कहते थे, इल्ला, मगर वो जिसको तू खुद अपने बीच में शरीक कर ले वो तेरा शरीक है। नहीं, खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अकीदे के मामले में बिल्कुल पाबंद हैं। क्यामत के दिन आपकी मेरी हजारों लाखों नेकियां फेंक दी जाएंगी अगर हमारा अकीदा खराब हुआ तो। हमारा लाखों खर्च करना, हमारे उम्रे, हमारे हज, हमारी नमाजें सब रद्दी की टोकरी में है अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयदना हुआ। तमाम अंबिया कराम की दावत अकीदे की एक ही थी, इस्लाह और अकीदा। हजरत यूसुफ जिनका किस्सा आप अहसन अल कसस के तौर पे पढ़ते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि जब कैद में थे तो कैदियों में से किसी ने ख्वाब देखा। जब ख्वाब की ताबीर लेने के लिए आए तो हजरत यूसुफ ने क्या कहा, आय 39 में आता है, या साहिब या सिजन, ए मेरे जेल खाने के साथियों, यानी ओ माई कंपेनियंस ऑफ द प्रिजन, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे होंगे या एक अल्लाह। यानी देखिए कैसे अक्ल को टच करते थे, अरबाबन मुतफर्रिकून खैरन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। शायद ना समझा सकी हो तो मिसाल देती हूँ, अल्लाह सबके शोहरों को सलामत रखे। फिर भी कभी कभी शोहर बड़े डिमांडिंग होते हैं, एक ही है ना, जितना भी रोक डाल लें चलो बर्दाश्त करें। आज आप उस सवाल का जवाब लेकर जाएं कि अल्लाह ने औरत को एक ही शादी की इजाजत क्यों दी है, मर्द को तो चार की दे दी, बल्कि हम तो उसको हक समझ लेते हैं कि औरत दो शादियां क्यों नहीं कर सकती। वो बाकी सारी बहसें साइड पे करते हैं, नसब और फुला फुला, उसकी नहीं बात करी। सच बताइए आप में जो मैरिड सिस्टर्स बैठी हैं, एक भी राजी हो जाए और कल हमारी गवाही दे दे, जान नहीं छूट जाएगी? दो की कुछ कर सकता था, तीन की, चार की? जब एक अल्लाह को राजी कर लिया तो ही बड़ा है, बाकियों को क्या करना। हम इतने खुदा क्यों बनाए बैठे हैं? और याद रखिए अल्लाह राजी हो जाता है, बंदे राजी नहीं होते। ये इम्पॉसिबल टास्क है जो हम लेते हैं। इसी तरह सूरह यूसुफ की आयत 40 में भी आता है कि तुम जिन चीज़ों को अल्लाह के सिवा पूछ रहे हो वो सिर्फ नाम है, जस्ट नेम्स, यानी सपोज्ड है, जो तुम्हारे बाप दादा ने रखा, और इसकी तो कोई सनद, इसकी तो कोई दलील ही नहीं अल्लाह ने रखी। तो बात यह है कि अल्लाह की इबादत करो। तो पता क्या चला, अकीदे में हम मजबूर हैं। ये जो बिलाल ने कोड़े खाए, अहद अहद कहने पे खाए थे, बीवी सुमैया का जिस्म दो हिस्सों में चिर गया, ये अकीदे की जंग थी। और ख़ुवाब बिन अरद, अब्दुल्ला बिन मसूद, वो मक्की दौर की सारी कहानियाँ, और वो जनीरा लॉन्डी नबीना कर दी गई, आंखों में सिलाइयाँ लगाई गई उनके, ये सब ये साबित करके गए कि हम अकीदे के मामले में मजबूर हैं। हत्ता के हाथ जब हजरत बिलाल का जो मालिक था उमैया, वो कहता था बिलाल एक बार कह दे कि और भी ला है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, कहा नहीं। हजरत बिलाल की माँ भी मुसलमान हो चुकी थी लेकिन उन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था, उमैया को ये बात नहीं बताती। एक दिन उनके पास जाकर कहता है कि अपने बेटे को समझाओ, आहद आहद कहता है, इतनी मार खाता है, तो इसको समझाओ कि अल्लाह के साथ किसी और का नाम ले लो, मुझे भी मान लो। तो माँ आई जब बिलाल के पास तो कहने लगी कि बिलाल तू इतनी मार क्यों खाता है, मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन अल्लाह का हुक्म है, मुझे तो पता है मैं मुसलमान हूँ, तो तू भी छुपा ले। तो हजरत बिलाल मुस्कुराए और खुश हुए, कहा क्या हुआ? कहा आज मुझे पता चला कि उमैया हार गया और मैं जीत गया हूँ। क्यों? अगर वो हारा ना होता तो मेरी माँ को सिफारशी बना के मेरे सामने ना भेजता। तो बिलाल साबित करके कि अकीदे के मामले में हम आज़ाद नहीं, ये अलग बात है दूसरे मुल्कों के वीज़े लगाने के लिए, असाइलम बनने के लिए, अपने मुल्क से हम न जाने क्या कुछ कह सुनकर निकले। दूसरी चीज़ है जी इबादत। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अकीदे में पुख्ता होंगे, अल्लाह आगे भी रखे और जो कमियाँ दूर कर दे। आइए ज़रा देखते हैं कि क्या इबादत के मामले में अल्लाह का हुक्म और मर्जी चलेगा या आपका मेरा। नमाज पढ़ते हैं ना, पांच पढ़ते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ सकते? फजर के बाद 2 घंटे बाद फिर एक नमाज पक्की कर लें अपने ऊपर। चलें छोड़े, नमाजें नियम बढ़ाते, हम सजदा कम करके रुकू बढ़ा लेते हैं। सजदा एक रुकू दो कर सकते हैं, रुकू बाद में सजदा पहले। शुरू में बैठ जाइए, बाद में खड़े होकर सलाम फेरें। क्यों? सल्लु कमाराई तुम नहीं हो सल्ली, तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। ये सही बुखारी की रिवायत है और किताब अदबुल मुफरत में 6008। तो नमाज में हमारी मर्जी नहीं चलती। हज करते हैं, अल्लाह आप सबको हज पे ले जाए, मुझे भी ले जाए। क्या कहा? खुजू मनासिककुम, मुझसे हज के तरीके सीख लो। आप में से किस किस बहन ने हज किया हुआ है? सच बताइए। मैं बड़ी डरती हुई और माजरत खाहाना अंदाज में कहूंगी कि हज की कई चीजें अकल में आती हैं। ये सफा मरवा की सही का क्या मतलब है? ये तवाफ इधर ही इधर एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं? नहीं मर्जी कर सकते आप? उम्रे में पहले आप तवाफ कर रहे हैं, बाद में सही कर रहे हैं, नहीं मर्जी चलती, इबादात में नहीं चलती। तीसरे नंबर पे चलते हैं मामलात। मामलात का हुक्म अल्लाह ने दिया, वक्फिस जनाहक मिनज़ ज़ुल्ली, अपने माँ बाप के आगे जिल्लत के बाजू बिछा दो और क्या कहो? वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ने माँ बाप का जो दर्जा बुलंद कर दिया है, मैं यार आप उसको छोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते। बच्चे को आक नहीं कर सकते माँ बाप, बच्चे को एबॉर्ट नहीं कर सकते। तो मामलात में कहाँ मर्जी है? निकाह, मर्द औरत का निकाह, कबूल और इजाब, मर्जियाँ कर सकते हैं? तो आप मुझे बताइए कहाँ हम आजाद हैं? हत्ता के खरीदो फरोख्त, माली मामलात, कर्ज लेन देन, हर चीज में अल्लाह का हुक्म चलेगा। ये बहुत बड़ा धोखा है कि हम ये कह दें कि हम आजाद हैं। फिर आप देखिए कि अल्लाह ने अपने हुक्म के साथ नबी की तबाह का हुक्म दिया। सूरत निसा की आयत 65, तो ये कितनी खूबसूरत आयत है कि जिसके बाद हुज्जियत हदीस यानी इम्पोर्टेंस ऑफ दी हदीस पे कुछ भी ना कोई कहे तो काफ़ी है। फला व रब्बिक ला यूमिनून, बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम है कि ये लोग जब तक अपने झगड़ों में आपको मुनसिफ यानी हकम ना मान ले और जो फैसला तुम कर दो इससे दिल में तंग ना हो बल्कि इसको खुशी से तस्लीम कर ले, तब तक ये मोमिन नहीं होंगे। यानी मैं और आप सुन्नत की जंजीरें पहने हुए हैं। ये निकाह क्या है? इतनी रस्में हैं निकाह में, तो निकाह ना पढ़ाइए। क्या फर्क पड़ता है अगर दो बोल मौलवी साहब के साथ ना पढ़े जाएं? कोई लिबरल से लिबरल बाप भी बेटी को भेज देगा किसी अजनबी के साथ? तो कहाँ है मर्जी? अभी तक तो निकाह नहीं निकला मुसलमानों की शादी से। आई डोंट नो अगले दौर में निकल गया तो नहीं पता कि नहीं छोड़ो, बहुत सारा कुछ हो गया, निकाह का स्लॉट क्विट कर दें। हत्ता के कसास में अल्लाह का हुक्म और उसकी मर्जी। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, सूरत मायदा की आयत 45 जाकर देखिएगा, अल्लाह ने एक एक जिस्म का उस लिख दिया। व कतब ना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, और इसी तरह नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, जख्मों का भी कसास है। आप पर मैं नहीं रुक सकते। तो मान लीजिए कि शरीयत में भी अल्लाह का हुक्म और उसकी मर्जी चलेगा। हम धोखा देते हैं खुद को, खामखा बात करते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है ना कि मेरे हुक्म को मानो, यही काफ़ी है। सूरत शुरा की आयत 13 में आता है, शरा लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, उसी ने तुम्हारे लिए दीन का रास्ता मुकर्रर कर दिया जिसके इख्तियार करने का हुक्म हजरत नूह को दिया गया और ए मोहम्मद आपकी तरफ भी वही की गई। एंड पे बस एक आखिरी मर्जी की बात करूंगी क्योंकि मैं भी औरत हूँ और आप भी औरत हैं। क्या लिबास के मामले में मेरी मर्जी चलेगी कि अल्लाह की? पक्की बात है, कोई दलील है इसकी? सूरत अल अराफ की आयत नंबर 26, या बनी आदम कद अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, ए बनी आदम हमने तुम पर पोशाक उतार दी और तुम्हारा सतर ढांके और तुम्हारे लिए खूबसूरती का भी जरिया हो। यानी लिबास के दो मकसद, पहला मकसद शर्मगाह की हिफाजत। और शर्मगाह यानी काबिले शर्म हिस्सों से मुराद प्राइवेट पार्ट्स नहीं है। आज वेस्ट ने उसको ही रखा और वो भी ना हो सका। ये तो एक अलग मौजू है ना, मेरा ये मौजू नहीं है आज। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना, मैं जो चाहूँ पहनूँ, मैं जैसी चाहे मर्जी लगूँ, मैं कुछ पहनूँ भी ना तो भी मेरी मर्जी है, तो आयत बता रही है कि जब तक तुम्हारी काबिले शर्म चीज़ें नहीं छुपेंगी, तुम्हारे लिबास का मकसद पूरा नहीं होगा। हाँ, जीनत कर सकते हो, मोती लगा लो, सितारे लगा लो, दबका लगा लो, गोटा लगा लो, कढ़ाई कर लो, सादा पहन लो, कोई मना नहीं है। ये भी एक अजीबो गरीब सामने धोखा दे दिया कि अच्छे कपड़े पहनने से दीनदारी ख़त्म हो जाती है, और दीन को सफ़ेद कपड़ों में डाल दिया ताकि अच्छे कपड़े पहनने वाले तो दीन से दूर ही रहे। नहीं जी, आप नहीं जा सकते दीन में क्योंकि आपको अच्छे कपड़ों का शौक है। पूरे कुरान और हदीस में कहीं ऐसी कोई बात नहीं मिलती जो आज हमारे कल्चर में न जाने किसने फैला दी। गिल्ट दे दिया लोगों को, हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं था। अल्लाह कहते करो, हाँ लेकिन बात यह है कि जो भी पहनो ओढ़ो वो शरीयत की पाबंदी पे हो, तो लिबास में अल्लाह की मर्जी होगी। आज सिर्फ इस एक जुमले पे इसको मैं क्लोज कर दूँ ना, इस टॉपिक को। आज वार्डरोब खोल कर घर की, कमरे की, शौहर के सामने की बातें नहीं करें। आउटडोर ड्रेसेस में से एक एक ड्रेस को देख कर बस एक सवाल कर लीजिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला, क्या ये मैं कपड़े पहन के बाहर गैरों में जा सकती हूँ? दैट्स इट। अब इस पे अगर आपका दिल चाहे, पूरी किताब लंदन में पढ़ाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लिबास का बयान। अभी चंद दिन पहले मुझे एक सिस्टर का सवाल आया था, उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, दीन की तरफ आई हैं माशाल्लाह, तो कहती सब कुछ मुझे समझ आ गया लेकिन अभी तक मुझे ये पर्दा हिजाब नहीं समझ आ रहा। तो कुछ क्वेश्चंस थे उनके, मैंने उन्हें कहा कि मुझे याद है मैंने इस पे बड़ा ज़ेर हासिल कोर्स करवाया था, आप ऐसा कीजिए कि उसकी ऑडियोज़ लेके सुन लें और फिर मुझसे सवाल करें, तो जो नहीं समझ आया होगा तो मैं बता दूंगी। और एक अलग से टॉपिक भी एडिट करके साथियों ने बना के डाला हुआ है। तो 2-3 दिन पहले उनका मैसेज आया, अपने इदारे की बहुत बड़ी, मतलब एक प्रिंसिपल है किसी कॉलेज की, और मैं सोचूं कि अब ये सवाल जवाब होंगे इसमें बड़े कि ये तो वो, लेकिन उनका वन लाइनर आंसर था कि जजाकअल्लाह खैर, आपने मुझे जो रिकमेंड किया मैंने आपका वो सुना और अब मेरे जहन में कोई एक कन्फ्यूजन नहीं, नो एम्बिग्यूटी, कुछ भी नहीं है। असल में हम पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, हम सोचते नहीं कर सकते, नहीं पहन सकते। भाई क्यों क्यों नहीं पहन सकते, किसने रोका है तुम्हें? अब कोई नाइट ड्रेस पहनकर बाहर फिरने लग जाए तो बेवकूफ़ी है ना। अभी बाहर सर्दी है तो लॉन का जोड़ा पहनकर फिरे कोई तो बेवकूफ़ी है ना। बस इतना फ़र्क है, जो कपड़े आप शौहर के सामने पहन सकते हैं वो घर के बच्चों के सामने भी नहीं पहन सकते, और जो घर के बच्चों महरमों के साथ पहन सकते हैं वो गैर महरमों में नहीं पहन सकते, और जो वहाँ पहन सकते हैं, जो अपनी औरतों में पहन सकते हैं, वो आप अपने मर्दों में पहने, वो भी नहीं ठीक। बस अक्ल इस्तेमाल करो तो बात तो कुछ भी नहीं है। तो क्या पता चला कि लिबास के मामले में अल्लाह की मर्जी। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूँ, माइंड तो नहीं करेंगे, दोबारा बुलाएंगे मुझे गुजरात? आप में से किस किस की शादी उसकी मर्जी से हुई थी? लव मैरिज हुई थी किसी की? मेरी तो लव मैरिज है, फर्क इतना है कि लव शादी के बाद हुआ। ये बताइए कि शादी अपनी मर्जी से हो सकती है कि नहीं? नहीं समझ आया सवाल।
हो सकती है,
हो सकती है, किस किस
नाम
को
का क्या
शौक
तो
है?
देते हैं इसमें भी अल्लाह का, अपने अपने वली को
अल्लाह का
आप
प्रमो तो फिर वो ही ना।
अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इस्लाम ने आपको शौहर, हर मर्द को बीवी चूज करने के इंतहाप में इतनी क्लियर गाइडलाइन दी है, इतनी क्लियर गाइडलाइन दी है, आप उसको यूज कर लें। अगर आपका मिजाज अच्छा है तो वो 100% आपकी मर्जी ही से होगी। औरत को पूरी चॉइस है कि वो एक दीनदार मर्द चूज करे, और मर्द को पूरी चॉइस है कि वो बीवी ऐसी चूज करे। लेकिन अगर दीन की समझ नहीं है और आप अपनी मर्जी से वली को निकाल दें, शादी के सारे तरीके को एग्जेम कर दें, तो आपकी मर्जी नहीं, तो फिर क्या आप और मैं अपनी मर्जी से किसी मर्द के साथ रह रहे हैं? सूरत निसा की पहली आयत खोल लीजिए और सूरत रोम की आयत 21, अल्लाह कहते हैं वमिन आयाति ही। ये तो एक बड़ी बात है, अब जाते जाते आपको खुशी कर दूं कि दुनिया में ये एक अजूबा है। आठवां अपने 7 वंडर्स तो देखे हुए हैं ना, सुनते भी होंगे, जानते भी होंगे। ये 8th वंडर है कि दो मुख्तलिफ इंसान एक छत के नीचे खुश रह लेते हैं। अल्लाह ने सूरत रूम में ये कहा है कि ये मेरी निशानियों में से, साइन फ्रॉम अल्लाह, कि तुम्हें अल्लाह ने दो मुख्तलिफ मिजाज होने के बावजूद इकट्ठा कर दिया ताकि लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून दो। अभी सुबह इसी पे बातें करके आई हूँ, सुबह का लेक्चर ही हमारा जो था घर टूटने ना पाए था, आपके इसी गुजरात में हुआ है। आपको इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे जो बात मैं आपको बताते हैं। मैं सिर्फ इसको समअप कर दूँ, जिंदगी हो, आइली जिंदगी, निजी जिंदगी, खानदानी जिंदगी, हम किसी चीज़ में आज़ाद नहीं हैं। करना क्या है, जो अल्लाह की मर्जी है उसको अपनी बना ले। सबसे खुश रहने का रास्ता बता रही हूँ, या किसी के बन जाए या किसी को अपना बना ले। फ्रिक्शन में जिंदगी नहीं गुजरती ना। बस हमारा रोना क्या है कि अल्लाह की मर्जी कुछ और है, हमारी कुछ और है। जब आपकी मेरी चॉइस अल्लाह से मिलती जाएगी तो अल्लाह भी खुश तो हम भी खुश। बस ये चॉइस चेंज करने के लिए कुरान पढ़ना पड़ता है। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था कि एक औरत से चार बातों की वजह से निकाह किया जाता है, तो वो चार बातें आप भी लीजिए। अब आप अपने बेटे के लिए कोई दुल्हन ढूंढने जा रहे हैं तो लड़की में चार चीज़ें देखिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप उसका खानदान देखिए, उसकी खूबसूरती देखिए, उसका माल देखिए, लेकिन उसका दीन भी देखिए। अब दीन के साथ ये तीन चीज़ें मिल गई, नूर नला नूर। लेकिन ये तो लेना है दीन, अब तीन में तो मिलती हैं, ले लीजिए, एक चीज़ मिलती है ले लीजिए। तो कुछ आज़ाद हैं कुछ नहीं। मैं एक मिसाल दे देती हूँ कि बकरी के गले में आप एक पट्टा डालें और 6 फुट की रस्सी के साथ उसको बांध दें। अब बकरी का सर्कल कितना है, 6 फुट डायामीटर। उसके अंदर रहेगी तो सिक्योर है, इंजॉय करेगी, भेड़िया उसको नहीं खाएगा, भूल नहीं जाएगी रास्ता। लेकिन जब वो 6 फुट से बाहर जाएगी तो रस्सी गले में फंसेगी। ये जो मेरी मर्जी करने वाले चक्कर है ना, वो 6 फुट से बाहर जाने वाले मसले हैं। आप अल्लाह की रजा में राजी रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ मामला करेगा। बल्कि लड़की को देखना, बातचीत करना कोई बुरी बात नहीं है। अब इसका ये भी नहीं मतलब कि डेटिंग शुरू हो गई। यानी हर चीज़ का अल्लाह ने तरीका और सलीका दिया है नबी के ज़रिए। अहादीस मौजूद हैं आपके लिए, स्लाइड्स पे भी डाली हुई हैं कुछ चीज़ें। एंड कर देती हूँ बात को, ये अनाह को ख़त्म करते हैं। अपनी ज़ात को बड़ा समझना, दूसरे को कमतर समझना, अपने आप को कुव्वत और ताकत वाला समझना और अपनी मर्जी के पीछे चलना असल में इस बात की दलील है कि आप खुद पसंद हैं। खुद पसंद की बजाय खुदा पसंद बन जाइए, अल्लाह को पसंद करें और यकीन करें अल्लाह आपको खाता देकर भी खुश होगा, पहनता देकर भी खुश होगा, आपको दुनिया में घूमता फिरता देकर खुश होगा। आप किसी को कोई चीज़ दें और उसको पहना देखें तो गुस्सा आएगा, आप खुश होंगे कि शुक्र है उसने पहनी, तो अल्लाह ने जो दिया क्या अल्लाह आपको पहनता ओढ़ता देकर खुश नहीं होगा। ये जो तासुब है ना वो गलत है। और अल्लाह ने तो दीन आपको सोने जागने, करवटें लेने, खाने, दाएं हाथ से खाओ, कपड़ा पहले सीधे पे पहनो, किधर करो, हत्ता के गधे और मुर्ख की आवाज़ सुन के क्या कहो, छींक आ जाए तो क्या करो। जो दीन आपको इतना कुछ सिखाए, क्या वो दीन कामयाब दीन नहीं होगा, मुकम्मल दीन नहीं होगा। तो दीन की एक एक चीज़ वाजे है, बस मेरी मर्जी को छोड़ दें और बंदा मोमिन बनने के लिए अल्लाह से हम सब दुआ करें कि वो जन्नत मिले। ये जो दुनिया में चाहना है ना, वो जन्नत में मिलेगा। सूरत हामिम सजदा आयत, बड़ी फेमस आयत है, इन अल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुमस्तकामू, के एंड पे क्या आता है, वलकुम फी हमा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फी हमा तत्तम। तो हम सब उस जन्नत की कोशिश करें, वहां जाकर अल्लाह कहेगा कि तेरी मर्जी, क्योंकि आज की दुनिया रब चाही तो वो दुनिया मन चाही। अगर यहाँ मन चाही लेनी है तो फिर वहां रब चाही मिलेगी। फैसला आपके मेरे हाथ में, ये चंद साल की जिंदगी अपनी मर्जी की करके वहां फंस जाए, या यहाँ के चंद साल अल्लाह की मर्जी के गुजार के वहां अपनी पसंद के ले लें। अल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया, वातीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह का हुक्म मान लो, तुम पे रहम किया जाएगा, वरना अपनी मर्जी पे चलेंगे। यकीन करें अपनी मर्जी करके भी खुश नहीं रहेंगे। अल्लाह को नाराज़ करने वाले जब अजाबों में जकड़े जाएंगे तो खुद को कोसेंगे। और अल्लाह ने आपको किसी ऐसी चीज़ से रोका नहीं है जो आपका जायज़ हक है। कुरान भी अल्लाह का है, आप भी अल्लाह के, ये एक मैनुअल है। जिस चीज़ को आपकी फितरत मांगती है ना वो ठीक है। तो जजाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जजाब भी दे।
मुस्लिम लड़कों से डायरेक्ट शादी कर रही हैं, तो इस चीज में अगर
देखिए इन्होंने मेरी दुखती रख छेड़ दी। बेटी मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं 2000 में ह्यूस्टन गई थी, तकरीबन उसके कोई 5 साल बाद, क्योंकि मैं स्टिल आई वाज इन ह्यूस्टन। मेरे पास एक हमारे अपने साथियों में से आई थी और उन्होंने एक मसला पूछा था कि आपको पता भी हो कि जहाँ कोई आपका रिश्तेदार अपनी बेटी की शादी करने लगा है और वो लड़का नॉन मुस्लिम हो, तो क्या आप फिर उस शादी में जा सकते हैं कि नहीं। ये आज से मेरे याददाश्त के खाने में आप देखिए कि तकरीबन 15-16 साल पीछे की कहानी है। ये मैं उस दिन की बात कर रही हूँ और आज की। अभी लास्ट वीक भी मुझे और इसी तरह के मैसेजेस से पता चलता है कि इस वक्त तो हालात ये हो गए। क्या ये सवाल है जो पूछा जाता है, प्रेगनेंसी की हालत में निकाह हो जाता? कभी आपने प्रेग्नेंट दुल्हन का नाम सुना था? आपने कभी दो लड़कों की शादी सुनी थी? आपने कभी दो लड़कियों की शादी सुनी थी? और आपने कभी ये बात सुनी थी कि माँ बच्चों को कहे कि बेटा जहाँ मर्जी शादी करो, लेकिन मुझे पहले बता देना ताकि मैं आ जाऊँ तुम्हारी शादी में। और एक माँ कहती है मेरे बेटे ने तो मुझे मुश्किल में नहीं डाला, उसने खुद ही ढूंढ ढांड के शादी के लिए जब तैयार था तो मैं गई और मैंने रस्में डाल दी। और किसी ने अपनी फैमिली को इनवाइट करके कि आप आइए शादी में, लड़का जो है वो है ही नॉन मुस्लिम और उसको मुस्लिम भी नहीं होना, तो हम इसकी मेहंदी करने लगे हैं, मंगनी करने लगे हैं। देखिए ये सिर्फ मैंने आपको पत्थर फेंके, इससे बहुत ज़्यादा बात बिगड़ी हुई है। यहाँ तो अभी ये जरासीम कम है और अल्लाह करे कि हम सब इसके आगे में एक दीवार बन जाएं। इस वक्त पूरे वेस्ट का प्रोपेगंडा, उनकी सारी एफर्ट्स आपके बच्चों की मत मरने की है कि औरत मर्द की जेंडर को ख़त्म कर दो। आप आज ये मर्जी का अंजाम है, ये अभी पिछले 3-4 महीने पहले की कहानी है सारी, कि आपका बच्चा लेट हिम डिसाइड। जब एक बच्चा 8-10 साल का हो जाएगा ना, फिर उसको डिसाइड करने दो कि यू वॉन्ट टू बी अ बॉय और गर्ल। यानी आप ये जो ब्लू और पिंक बैलून्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं, आप मत खरीदिए, इट्स आउटडेटेड नाउ। वो लोग जो अपने स्कूलों में डे केयर में एक लड़का एक लड़की बिठाते थे, ये कई साल से देखते आए हैं, अब पर्पसली वो लड़की लड़की और लड़के लड़के और उनसे वो हरकतें करवाते हैं। जिन डे केयर्स की दीवारों पर, मैं गवाही दे सकती हूँ इस बात की, डे केयर में 3 साल का बच्चा जाता है नॉर्वे में, और उस डे केयर की दीवारों से लेके किताबों से लेके वहाँ की टीचर से स्टाफ से लेके हर बंदा सिर्फ एक सबक पढ़ा रहा है, वी गे। और एक आखिरी चीज़, हमारी एक साथी हैं, उन्होंने खुद अपनी कहानी सुनाई थी कि उनके स्टाफ की 2 फीमेल मेंबर्स और उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। ये कहती हैं पूरे स्कूल वाले टीचर्स मिलके ना सिर्फ उनकी शादी में गए बल्कि उनको गिफ्ट भी दिया। अब इनके लिए भी एक इम्तिहान है कि इस शादी का क्या करें। फिर वो दोनों स्कूल में आती रहीं, एक हस्बैंड एक वाइफ हैं दोनों औरतें। फिर कुछ अरसे के बाद उनकी ख्वाहिश हुई कि बच्चा हो। अब वो बच्चा कैसे हासिल किया, मुझे हया आ रही है इधर बात करते हुए। किसी उल्टे कपड़े पहनने आपने, तो ये मेरी मर्जियों का नतीजा है। जी देखिए, ऐसे खुदा न खास्ता बच्चे जिनके अंदर ऐसी खराबी, उनसे काउंसलिंग कीजिए। लान तान बुरा भला नहीं कहें। देखिए इस मौजू पे बहुत कुछ है। इस वक्त अगर आपने अपने बच्चों को और जवान होते बच्चों को अगर कटी पतंगों की तरह छोड़ दिया ना मीडिया के और वीडियो गेम्स के सहारे पे, तो न जाने क्या हो जाएगा। पूरी दुनिया में झंडे खड़े करके लोग खड़े हैं इस वक्त। वो खूबसूरत सतरंगी कौसो कज़ा जो आसमान पे थी तो कितनी हसीन लगती थी। मुझसे पूछिए कि जब हम गलियों में सड़कों पे रोड्स पे वो चीज़ों को एक ऐसी गंदी चीज़ के सिंबल में देखते हैं तो दिल पे क्या गुजरती है। हर सरकारी इमारत पे वो झंडा इस वक्त लगा हुआ है। नाम मैं क्या लूँ मुल्कों के, और ये गर्मियों में मैंने कुछ 7 मुल्क फिरे हैं सिर्फ 1-1.5 माह में। हर मुल्क के अंदर दीवारों पे बच्चों को सबक जमा रहे हैं। वो उन्होंने अपना एक स्लोगन बना लिया है कि ये कौसो कज़ा जो है ये रंग अब हमारा सिंबल है। एक सिस्टर बच्चों के लिए एक अम्ब्रेला खरीद लाई, कहती उसके ऊपर भी कोसो कजा बनी हुई थी, तो मैं ले तो आई, तो उनको पता भी नहीं था बेचारी को। मेरे हस्बैंड घर आए तो कहा क्या ये, उनको गुस्सा आ गया, ये क्या ले, कहती क्या हुआ है, कहते तुम्हें नहीं पता ये क्या है, कहती फिर उन्होंने मुझे बताया ये क्या। पूरे वेस्ट का इस वक्त एजेंडा ये है कि वो आपके मुल्कों में आपके अपने आप को ही उन्होंने पानी में डाला, आपको भी डालने के लिए तैयार है कि एक दफ़ा इसको अप्रूव करा दो, और हो रहा है अप्रूवल, और क्या कुछ है, इस मौजू को यहाँ ना छेड़ें। और यकीन करें ये मेरी मर्जी कल्चर का नाजायज़ वे भी है, अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। इस वक्त सोने का वक्त नहीं है, हमारी नस्लें बिल्कुल बुराई के उस गंदे कीचड़ में डाल दी जा रही हैं, हमें पता भी नहीं हमारे इस घरों के खूबसूरत साफ सुथरे माहौल में हमारी नस्लों के दिमागों में जो गंदगी भरी जा रही है, ये वही है कि मेरी मर्जी। तो अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। तो जज़ाकल्लाह खैर, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुनिन व जालना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह ताला आपका यहाँ आना कबूल करे, सबकी बीमारियों को दूर करे, परेशानियों को दूर करे, जो भी किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उसे निकाल दे। अल्लाह ताला हमारी नस्लों के दीन ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें अच्छे पेरेंट्स बनाए, और हमें अपने बच्चों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।